أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. کتاب آموزش فلسفہ میں ہماری بحث دسویں درس میں چل رہی ہے جو کہ پہلے باب کا آخری درس ہے، چونکہ پہلا باب جو ہے وہ مقدماتی تھا کہ جس میں ہم نے مختلف بحثیں جو مقدماتی ہیں وہ اس کتاب کے توسط سے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں. دسویں درس کے اندر جو ہے وہ ضرورت فلسفہ کے اوپر گفتگو ہوئی تفصیل سے، اور اس کا آخری بخش جو ہے وہ فلسفے پر ہونے والے اعتراضات کے جواب کے بارے میں ہے. دو اعتراض آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں بیان کر کے جواب دے دیے تھے، اس کا تکرار نہیں کرتے، اگلے بحث میں وارد ہوتے ہیں تاکہ آج ہم اس درس کو ختم کر سکیں. تیسرا جو اعتراض جو فلسفے پر کیا جاتا ہے وہ یوں بیان کرتے ہیں، اشکال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ہم فلسفے کی قدر و قیمت جو آپ نے بیان کی ہے اس پر کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں جبکہ فلسفے کی مخالفت کرنے میں جو علماء کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک بات، بس پہلی ایک کیا دلیل ہے کہ علماء و دانش مند جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں فلسفے کے مخالف ہیں. بس جب اتنی بڑی تعداد میں علماء مخالف ہیں تو ہم فلسفے کی جو قدر و قیمت ہے اس پر کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں. دوسرا اسی شبہ کا جو حصہ بنتا ہے وہ یہ کہ فلسفے کی مذمت میں روایات بھی نقل ہوئی ہیں. تو ایک طرف تو علماء مخالف ہیں، دوسری طرف سے روایات بھی مذمت میں نقل ہوئی ہیں، تو ان دو وجوہات کی بنا پر ہم فلسفے پر اطمینان حاصل نہیں کر سکتے. جو پہلے ہم نے دو شبہ بیان کیے ہیں وہ اعتراض، پہلا اعتراض جو ہے وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سائنسدان بھی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی جو تجربی روش کا قائل ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ افراد و طبقات بھی جو ہیں وہ فلسفے پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں. دوسرا جو اعتراض تھا یہ وہ کر سکتے ہیں فلسفے کے اوپر کہ جو میٹافزک کے منکر ہیں وہ اشکال کر سکتے ہیں اس کے اندر. یعنی کہ جو اوپر ہم نے دوسرا اشکال جس کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی، اس میں دینی طبقہ مد نظر نہیں ہے، چونکہ یہ اشکال ہی ان کا نہیں ہے. یہ ان افراد کا اشکال ہے کہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، مشکوک ہیں، یا مثلا جو ہے وہ میٹافزک کا انکار کرتے ہیں، ماورائے مادہ ماورائے طبیعہ کے قائل نہیں ہیں. یہ جو تیسرا شبہ ہے یہ خالص دینی ہے، اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ درس میں، کہ جو مستقل عنوان سے آپ کی خدمت میں دیا تھا کہ فلسفے پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات، ان دونوں حصوں کو تفصیل سے وہاں پر جواب دے دیا تھا. میں یہاں پر فقط خلاصہ اس کا ذکر کرتا ہوں اور آگے چلتے ہیں. جو آیت اللہ مسمان نے یہاں پہ بیان کیا اس کو فرماتے ہیں کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ فلسفے کی مخالفت میں چونکہ بہت زیادہ علماء دانش مند موجود ہیں، پس ہم فلسفے کی جو قدر و قیمت ہے اس پر ایمان یا اطمینان حاصل نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فلسفے کی مخالفتیں ہوئی ہیں ان کی مختلف کیٹیگری ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے فلسفے کے مخالفت میں ہونے والے اعتراضات کے جواب کا درس شروع کیا تھا تو اس کا پہلا درس ہی یہی رکھا تھا کہ فلسفے کی مخالفت کی انواع و اقسام. कि फलसफे की कितनी किस्म की मुखालफतें हुई हैं और वो कितनी नोयत की थी, यानी उनके जो पीछे मुहर्रकात थे वो कौन कौन से थे। मतलब फलाने तबके ने अगर मुखालफत की है उसकी क्या वजह है, फलाने तबके ने अगर मुखालफत की है उसकी वजह क्या है। तो आयतुल्ला मिसबाह भी यहां फरमाते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मुहर्रकात की वजह से, मुख्तलिफ सबब की असबाब की वजह से फलसफे की जो है वो मुखालफत की है। लेकिन कहते हैं कि हम फकत उन अफराद के बारे में बात करते हैं कि जो फलसफे की मुखालफत किसी तअस्सुब में नहीं करते थे। बाज़ुकात है आपको मिलेंगे मुखालफतें ऐसी कि जो फकत तअस्सुब में है, यूनान से आगे आएगा क्योंकि यूनान से आया है, फलसफा गलत है या फलसफा के जरिए बहुत सारी वो और मुश्किलात जो हैं वो देख रहे होते हैं तो आकर एतराज़ करने लग जाते, तासुब। वो कहते हैं कि ना, आयतुल्लाह मिसबाह फरमाते हैं अभी हम उन दानिशमंदों की बात करते हैं कि जो किसी किस्म का कोई गरज, किसी किस्म की कोई गरज नहीं रखते थे, तासुब कोई खास किस्म का उनके अंदर नहीं पाया जाता था फलसफे की नस्बत। कहते हैं अगर आप इन अफराद को मद्देनजर रखें तो हम यही कह सकते हैं और कहना यह दुरुस्त भी है कि उन अफराद ने असल फलसफा का इनकार नहीं किया, असल फलसफा की मुखालफत नहीं की है, बल्कि फलसफे के अंदर जो बाज अफकार मौजूद थे और उन उलमा की नजर में वो अफकार कुरान व रिवायात के मुताबिक नहीं थे, उनकी मुखालफत की है। ना ये कि असल फलसफा की मुखालफत की है। बस आप उला इन जैसे, ये जो आप यूं कह लें कि मुतदिल उलमा हैं जिन्होंने वाकई जो है वो मुनसिफाना नकद किया है फलसफे के ऊपर, वो असल फलसफा पर तनकीद नहीं है बल्कि फलसफे के उन मसाइल के ऊपर तनकीद है कि जो उन उलमा की नजर में दीन इस्लाम के साथ साजगार नहीं थे। अब उसके अंदर भी बहस है कि वो तनकीद उनकी, ये कहना उनका कि ये मसला कुरान के साथ साजगार है या नहीं है, ये एक अलग बहस है कि उनके साथ जाकर बहस की जाए कि आया वाकई जो ये दावा कर रहे हैं कि फलाना फलाना मसला दीन इस्लाम के साथ साजगार नहीं है, तो आया वाकई वो दुरुस्त भी है या दुरुस्त नहीं है, ये एक अलग बहस है। तो आप जाकर वहां देखेंगे कि बाज़ जो दावे किए गए हैं कि दीन इस्लाम के मुखालिफ हैं बाज़ अफकार, तो वो उन दावों में दुरुस्त साबित नहीं होते। लेकिन हाँ, बाज़ जगह पर आप देखेंगे कि जो कदीम मुल्ला सदरा से पहले फलासफर ने जो बाज़ नज़रियात दिए थे फलसफी तौर पर, वो यानी आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर नकद वारद है, बाज़ मसाइल को कबूल नहीं करता। आप देखते हैं कि मुल्ला सदरा ने अपने से पहले तमाम फलासफर जो थे जहां जहां उनके नजरियात में कमियां मौजूद थी या उनके अंदर जो है वो मुश्किलात मौजूद थी उसके ऊपर बहस की है आकर। तो अब अगर वो इब्न सीना को रद्द कर रहा है मुल्ला सदरा, या अगर शेख इशराक को रद्द कर रहा है या किसी और फलसफी को रद्द कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि मुल्ला सदरा जो है फलसफे का मुखालिफ है। नहीं, इसी तरीके से बाकी उलमा है जो मौजूद हैं। लेकिन बाज अफराद ने जो है वो किसी और असबाब के तहत जो है वो मुखालफत की है, कि चूंकि इसके ऊपर तफसील से बात हो चुकी है उसको दोबारा यहाँ तकरार नहीं करना, और जिन दोस्तों ने वो बहस नहीं सुनी तो वो जाकर जो है वो सुन सकते हैं उसको। बस एक का जवाब दे दिया। दूसरा जो हिस्सा था इस एतराज़ का वो ये कि रिवायात मौजूद हैं फलसफे की मजम्मत में, बस हम फलसफे को नहीं मानते, इसका भी तफसील से जवाब दिया था। क्या जवाब था उसका? कि पहली बात तो यह है कि मोतबर रिवायत फलसफे की मुखालफत में असलन मौजूद ही नहीं है। ना सिर्फ ये कि रिवायात मोतबर नहीं है बल्कि घड़ी हुई रिवायतें हैं। तफसील से उस पर बात की थी कि ये रिवायतें जो हैं इसका मसदर जो है, मंबा असली जो है वो हदीकतुश्शिया है, کہ جو منسوب ہے مقدس اردبیلی کی طرف اور اس کتاب کے اندر بحث ہے علماء کے درمیان کہ آیا مقدس اردبیلی کی کتاب حدیقت الشیعہ تھی یا نہیں تھی. تو بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے کہ حدیقت الشیعہ جناب مقدس اردبیلی کی کتاب ہی نہیں ہے. دوسری بحث جو موجود ہے اس کتاب کے بارے میں وہ یہ کہ وہ والا باب کہ جس میں فلسفہ اور عرفان کی مذمت میں روایات موجود ہیں اصلی نسخوں میں وہ باب ہے ہی نہیں ہے. تو یہاں سے اور بہت سارے قرائن اور شواہد ہیں کہ جو تفصیل سے فلسفے کی مخالفت کے جواب کے درس میں جو ہے وہ بیان کر دی تھی اس کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو وہ مطلب مل جائے گا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ روایات نہ صرف یہ کہ معتبر نہیں ہے بلکہ جعلی و گھڑی گئی ہیں. بس جب روایات کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ وہ قابل کیا نام ہے ان کو قبول کیا جائے تو فلسفے کی اگر اس میں مذمت بھی موجود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک اور مطلب جو آیت اللہ مصباح فضل اللہ فرماتے ہیں اس شبہ کے جواب میں وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ فلسفے سے مراد کیا ہے ہماری. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جستجو کرنا فلسفی، تحقیق کرنا فلسفی، فلسفی طور پر جو ہے وہ تلاش کرنا، اس سے مراد ہماری کیا ہے؟ ہماری مراد یہ ہے کہ عقل کو استعمال کرنا ان مسائل کے حل میں کہ جن کو ہم فقط روش عقلی سے حل کر سکتے ہوں. مثلا بعض مسائل ایسے ہیں دین کے کہ جو عقل سے حل ہونے والے ہی نہیں ہیں. مثلا قیامت کے احوال، قیامت کیسی ہے، قیامت میں کیا ہوگا، عقل کا یہاں پہ میدان نہیں ہے. یہ فقط کیا ہے، روایات کے ذریعے ہی انسان کو معلوم ہو سکتا ہے. لیکن بعض مسئلے ایسے ہیں کہ جن کو آپ کیا ہے، عقل کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اس بات کر سکتے ہیں. تو ہماری جو مراد ہوتی ہے کہ فلسفی تحقیق، اس سے مراد کیا ہے کہ مسائل کا حل کرنا روش عقلی کے ساتھ، اور عقل کا روش عقلی کے ذریعے مسائل کو حل کرنے میں استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں فلسفہ. اگر یہ والی چیز مد نظر رکھی جائے تو پھر اگر آپ آیات اور روایات کی طرف رجوع کریں تو آپ کو الا ماشاء اللہ آیات بھی اور روایات بھی ملیں گی جو تاکید کرتی ہیں تفکر عقلی کے اوپر. عقلاً جو ہے وہ آپ نے تفکر کرنا ہے. یہ ایک جواب تھا کہ جو جناب آیت اللہ مصباح فضل اللہ نے اس کتاب میں بیان کیا ہے. اس کے بعد چوتھا شبہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ فلاسفہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو مسائل فلسفے میں ڈسکس ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے ان کے بارے میں، یہ مسائل قرآن اور روایات میں موجود ہیں. اسی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، شاہد کے طور پر قرآن و روایات سے کیا ہے ایک مطلب لے کر آتے ہیں، یا آیت لے کر آئیں گے یا روایات لے کر آئیں گے. تو اب یہاں پہ مستشکل آ کے اشکال کرتا ہے، کہتے ہیں اگر یہ جو آپ مسائل فلسفے میں الگ علم کے الگ علم قرار دے کے اس میں بحث کر رہے ہیں، اگر یہ سارے مسائل قرآن کے اندر و روایات کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ مطالب آئے ہیں، تو پھر الگ طور پہ آپ درس قائم کریں، کتابیں لکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ فقط قرآن اور روایات کی طرف رجوع کریں اور ان مسائل کو حاصل کر لیں. تو الگ فلسفی کتابوں کی طرف جا کر رجوع کرنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. اور یہ جو فلسفی کتابیں موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یونان سے اقتباس کی گئی ہیں غالباً. تو جب فلسفی ابحاث قرآن و روایات میں موجود ہیں تو پھر ہمیں یونانی کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم فقط قرآن و روایات کی طرف رجوع کریں. یہ ایک اعتراض جو بیان کرتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ فلسفی مباحث کا کتاب اور سنت میں، قرآن اور روایات میں ذکر ہونا اس کے فلسفی ہونے کو ختم نہیں کرتا. مثلا یہ نہیں ہے کہ اگر روایات، اگر جو ہے وہ فلسفی ایک بحث کہ جو فلسفی کتاب میں بحث ہو رہی ہے وہ اگر قرآن کے اندر ہے تو وہ فلسفی نہیں کہلائے گی. مثال کے طور پہ اگر روح کے بارے میں، کیونکہ روح جو ہے وہ فلسفی علم میں بحث ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا علم النفس فلسفی میں روح کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ یہ مجرد ہے یا مادی، درست ہے؟ فلسفی کی ایک شاخ ہے علم النفس فلسفی. تو اگر روح کی بحث فلسفہ میں ہوتی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ روح کی بحث جو ہے وہ آیات اور روایات میں بھی موجود ہے، تو آیات اور روایات میں ذکر ہونا اس کے فلسفی ہونے کو ختم نہیں کرتا، بلکہ وہ فلسفی بحث ہی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ کہاں کی دلیل بنتی ہے کہ اگر ایک مطلب جو ہے وہ قرآن اور روایات میں آیا ہو تو ان کو، اس مطلب کو یا ان مطالب کو ہم استخراج کر کے ایک علم میں تدوین نہیں کر سکتے، یہ آپ نے کہاں سے ملازمہ نکالا ہے؟ اگر آپ نے یہ ملازمہ نکالا ہے تو آپ باقی علوم کے اوپر بھی جا کر اس کو اپلائی کریں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ علوم کے جن کے مطالب قرآن اور روایات میں ذکر ہوئے ہیں تو الگ علم بنانے کی پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر ان کو بھی حذف کر دیں، پھر ان کو بھی ختم کر دیں. مثلا آپ فقہ کہاں سے لیتے ہیں؟ آیات اور روایات سے لیتے ہیں، تو علم فقہ کو بھی ختم ہونا چاہیے. علم اصول کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ اس کے بعض قواعد جو ہیں وہ آیات اور روایات سے اخذ شدہ ہیں، تو آپ اس کو بھی پھر ختم کر دیں. اور اس طریقے سے باقی علوم کے بارے میں. بس ضروری نہیں ہے کہ جو علم، جو مطالب قرآن میں ذکر ہیں ان کو ہم الگ علم میں تدوین نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ بات درست ہے، قرآن چونکہ ہدایت کے لیے آیا ہے، ہدایت کی خاطر قرآن میں مطالب منظم طور پر بیان نہیں ہوئے ہوتے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مطلب جو ہے پہلے پارے میں ذکر ہوا ہے، اسی سے ریلیٹڈ مطلب جو ہے پھر کسی اور پارے میں جا کر جو ہے وہ بحث ہوتی ہے اور قرآن اس کو ذکر کر رہا ہوتا ہے. کیوں یہ ہے کام؟ ہدایت کا تقاضا ہے. خدا نے دیکھا ہے کہ انسان کی ہدایت کرنی ہے، اور ہدایت اس طریقے سے کی جا سکتی ہے. لیکن جب ایک کتاب لکھی جاتی ہے تو کتاب کا نظم کچھ اور ہے. اس کا نظم یہ ہوتا ہے کہ اس میں مقدمہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ اتنے سارے درس ہم نے کیا ہے مقدماتی بحث میں گزارے ہیں، پھر اس کے بعد اصلی بحث میں وارد ہوتے ہیں. ایک خاص نظم ہوتا ہے علمی کتاب کے اندر جو رائج ہیں. یہ جو ہے ممکن ہے کہ یہ ترتیب جو ہے وہ ہدایت کے لیے کارآمد نہ ہو، اور قرآن نے اس رائج کتابوں کی ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا ہے، بلکہ ہدایت کی جو روش، خدا چونکہ خالق ہے اس جہان کا، اس انسان کا، خدا جانتا تھا کہ اس کی ہدایت کے لیے جو مطالب کس طریقے سے بیان کرنے ہیں اس طریقے سے بیان کیے ہیں. بس ہم مقایسہ نہیں کر سکتے قرآن کو باقی کتابوں کے ساتھ. ہاں، لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ الگ علم جو ہے وہ تولید کرتا رہتا ہے، تو ایک اپنے ایک علم کے اوپر تمرکز کرنے کے لیے، ایک علم کے اوپر فوکس کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے کہ وہ مطالب کے جو قرآن اور سنت میں ذکر ہوئے ہیں ان کو جدا کر کے خاص نظم میں کتابی حالت میں بیان کر دیتا ہے، اور پھر اس کو تدریس کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے. بس قرآن میں ہونا الگ علم میں نہ ہونے کے مترادف نہیں ہے. और फिर कहते हैं कि ये जो आखिर में थोड़ा सा आपने तंजिया जुमला इस्तेमाल किया है कि मामूलन जो किताबें हैं फलसफी वो यूनान से इख्तिबास शुदा हैं, यानी गोया कि आप कहना ही चाहते हैं चूंकि यूनान से आई हैं बस पढ़ने का क्या फायदा, आप कुरान और सुन्नत की तरफ आओ, यूनानी किताबों की तरफ आप क्यों जा रहे हो, यानी गोया कि यूं कहना चाहता है ये मुस्तशकिल। तो आयतुल्लाह मिस्बाह इस हिस्से को भी जवाब देते हैं, फरमाते हैं कि यूनानी किताबों में इन मबाहिस का होना और उनसे इक्तिबास कर लेना इन मसाइल की अहमियत और कीमत को कम नहीं करता। जैसा कि आप देखें रियाजी है, तिब है, हैअत है, ये वाले उलूम यूनान से आए हैं इस्लाम के अंदर, और कोई भी इंसान ये नहीं कहता कि रियाजी चूंकि यूनान से आई है नहीं पढ़नी चाहिए, तिब चूंकि यूनान से आई है नहीं पढ़नी चाहिए, हैअत चूंकि यूनानी इल्म में नहीं पढ़ना चाहिए, कोई नहीं कहता उसके बारे में। बस यूनानी होना एक इल्म को न पढ़ने न सीखने का लाजिमा नहीं हो सकता। एक और जहत से जवाब देते हैं, वो ये कि क्यों हमें जरूरत महसूस हुई कि हम वो मतालिब के जो कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं उसको अलग तदवीन करके बयान करें, उलूमे अकली व फलसफी जो मतालिब कुरान में जिक्र थे। फरमाते हैं कि उसकी वजह यह है कि कुरान ने तो हिदायत की खातिर एक खास रविश से मतालिब को बयान किया है, इल्म में जब एक खास नाज़म के साथ एक खास उसलूब के साथ किताबी हालत में जब बयान कर दिया जाता है मतलब को, तो उसके अंदर फिर निगाह रखी जाती है उन मकातिब की तरफ के जो खुदा का इनकार कर रहे होते हैं, कुरान का इनकार कर रहे होते हैं, उनके एतराजात को मद्देनजर रखते हुए उन किताबों में उनका जवाब दिया जाता है। कुरान और रिवायात में तो कुल्ली उसूल जिक्र हुए हैं या उस जमाने में जो मुश्किलात मौजूद थीं उनको बयान किया गया है, हम अलग किताब के अंदर उन्हीं उसूलों के तहत उन्हीं कवायद के तहत कि जो कुरान और सुन्नत में जिक्र हुए हैं अलग किताब में आकर नए एतराजात के जो उस जमाने में मौजूद नहीं थे आज मौजूद हैं उन एतराजात का जवाब देते हैं उन किताबों में। बस इस वजह से भी इसको अलग से जो है वो बयान करते हैं। ये एक जवाब दे दिया तकरीबन इसका इन्होंने। पांचवा इश्काल जो यहां पर बयान करते हैं वो ये है कि फलसफे के रद्द पर बेहतरीन दलील वो इख्तलाफात हैं कि जो खुद फलासफा के दरमियान में मौजूद है। आप कहते हैं कि फलसफा बुरहानी है, फलसफा यकीन की मंजिल तक पहुंचाता है, फलसफा कदर व कीमत रखता है। कहते हैं अगर ये इस लेवल का होता, इतना बुरहानी अगर होता, तो फिर फलासफा के दरमियान जो इख्तिलाफ इतना है तो इनका इख्तिलाफ रखना जो है वो इस बात का सबब बनता है कि इंसान इत्मीनान उससे सल्ब हो जाए। इंसान ये कहता है कि मैं कैसे मानूं इसकी बात, इब्न सीना कुछ कह रहा है, शेख इशरा कुछ कह रहा है, सदरा जो है वो कुछ कह रहा है, तो इत्मीनान जो है वो सल्ब हो जाता है। बस ये इख्तिलाफ दलील है इस बात की कि फलसफा गलत है, इख्तिलाफ को यहां पर गलत होने की दलील बना रहा है। जवाब इसका क्या है? पहला जवाब तो ये है कि आप अगर ये तलाजुम कायम करना चाह रहे हैं कि इख्तिलाफ फलासफा में मौजूद है पस फलसफा गलत है, तो ये कायदा तो फिर सारे उलूम पे तत्बीक करता है। इल्म उसूल के अंदर उलमा का इख्तिलाफ है मसाइल के अंदर, बस इल्म उसूल भी नहीं होना चाहिए। कवायद फिकहिया में फुकहा का इख्तिलाफ है, बस उसको भी नहीं होना चाहिए। इल्म रियाजी के अंदर जो है माहरीन रियाजियात का जो है वो इख्तिलाफ है, पस रियाजी को भी नहीं होना चाहिए। इला इसी तरह आगे चलते जाएं, आपको कोई ऐसा इल्म नहीं मिलेगा कि जिसके मसाइल में कुछ ना कुछ मसाइल में या बाज या अक्सर वो एक नोयत फर्क करती है उसमें माहरीन का इख्तिलाफ ना हो। बस ये इख्तिलाफ को दलील बनाना कि वो इल्म ही बातिल है, ये नजरिया जो है वो दुरुस्त नहीं है। हो, इसके बाद जो है वो अगला जो है वो एक शुबहा बयान करते हैं, बल्कि मैं इसको थोड़ा तकमील कर दूं, आगा मिसबा ने थोड़ा इसको मुख्तसर अंदाज में जो है वो बयान किया है, वो यही है। पहला तो ये नकली जवाब था कि इख्तिलाफ अगर दलील है एक इल्म के बुतलान के ऊपर, तो फिर तमाम उलूम बातिल होने चाहिए, क्योंकि हर इल्म में कहीं ना कहीं इख्तिलाफ जरूर पाया जाता है। बल्कि हम इस मुस्तशकिल को उसी की जबान में अगर जवाब दें, तो वो यूं जवाब देंगे कि आप अगर इख्तिलाफ को दलील बुतलान मानते हैं, तो फिर उसूल अकायद का दर्स देना भी छोड़ दें। उसूल अकायद की जो किताबें हैं, अकायद की किताबें हैं, इल्म अकायद है, इल्मुल कलाम है, उसको भी खत्म कर दें फिर। क्यों? क्योंकि खुद खुदा के बारे में जो है इतना ज्यादा इख्तलाफ है बशरियत का। एक तबका कहता है खुदा है नहीं है, दूसरा तबका कहता है खुदा मशकूक है, तीसरा तबका कहता है खुदा है। तो आप पूरी बशरियत को अगर आप मद्देनजर रखें, ना कि आलम इस्लाम को मद्देनजर रखें, पूरी बशरियत को अगर आप मद्देनजर रखें, तो खुद खुदा ही के बारे में जो है वो इख्तलाफ मौजूद है। आगे चलें, नबुव्वत के बारे में इख्तलाफ मौजूद है, हिंदुस्तान में या हिंद के अंदर हैं ऐसे फिरके के जो असल नबुव्वत के मुनकर थे, असल नबुव्वत को ही नहीं मानते थे। बस अगर आप बशरियत को मद्देनजर रखें, खुद तौहीद भी जो है वो इख्तिलाफी मसअला है, नबुव्वत भी इख्तिलाफी मसअला है, माद भी इख्तिलाफी मसअला है। माद को कौन मानता है? हिंदुस्तान के मसलन जो ये नजरियात मौजूद हैं, उनमें से आपको एक बहुत बड़ी तादाद मिलेगी कि जो माद की मुनकर है, ये तनासुख का जो नजरिया वो कायल है हिंदुइज्म में, उसकी एक वजह जो ये जिक्र की जाती है कि वो माद का इनकार करते हैं और वो इस चरखिस के कायल हैं। अगरचे सबका नजरिया नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद है कि जो इस तनासुख को मानते हैं कि बार बार रूह जो है वो मुंतकिल होती है और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहता है। अजाबो एकाब को वो इस तनासुख के जरिए इसी दुनिया में जो है वो हल करते हैं, सवाबो एकाब को। तो अगर आप इस तरीके से इख्तिलाफ को दलील बनाएंगे, तो इससे तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता, बस आपकी ये दलील और ये शुबहा जो है वो करामत नहीं है। अगला जो शुबहा बयान करते हैं वो ये कि आखिरी आखिरी शुबहा है, वो ये है, हम देखते हैं कि फलासफा जब फलसफे की हकीकत पर बात करते हैं, तो उसमें एक मतलब ये बयान करते हैं कि फलसफा इंसान के तकामुल में मददगार है। फलसफा इंसान की अकली व इल्मी रुश्त करता है, और जिसकी वजह से इंसान अपने अमल में क्या हो जाता है, नेक हो जाता है। अपना जो हदफ निहाई है, जो कि खुदा का कुर्ब है, वो हासिल करना शुरू कर देता है। ये फलासफा बयान करते हैं। मुस्तशकिल ये कहता है कि किसने कहा है कि फलसफा जो है वो इंसान को जो है वो अखलाकी तौर पर जो है वो अच्छा बना देता है, कुर्ब इलाही का सफर जो है वो अच्छे तरीके से तय करता है। हम देखते हैं कि फलासफर मौजूद थे और वो अपने अंदर अखलाकी मुश्किलात रखते थे। मसलन आप वेस्ट के अंदर अगर मुख्तलिफ फलासफर की जिंदगी का मुताला करें, तो आपको मिलेगा कि फलसफे की दुनिया में माहिर तरीन है, लेकिन अखलाकी एतबार से वो पस्त तरीन इंसान थे। हैं ऐसे अफराद आपको मिल जाएंगे। तो फरमाते हैं कि पस मालूम हुआ कि फलसफा ना तो फर्दी सआदत की चाबी बन सकता है और ना ही इज्तिमाई सआदत की। हमने चूंकि जरूरत फलसफा में यह बात साबित की थी कि फर्दी तौर पर भी अगर सआदत चाहिए तो फलसफा काम आएगा, अगर इज्तिमाई सआदत चाहिए तो वो भी फलसफा उसके अंदर दखालत रखता है। तो कहते हैं हमें तो नजर नहीं आता, इसका उल्ट बाज़ औक़ात नजर आता है। तो जवाब क्या है उसका? जवाब उसका यह है कि हम जो ये कह रहे हैं कि फलसफा इंसान की फर्दी और इज्तिमाई व मुआशरती सआदत के अंदर दखालत रखता है, ये इल्लत तामा के उन्वान से नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जो भी फलसफा पढ़ता जाएगा वो सआदतमंद होता जाएगा, उसको और शरायत की जरूरत नहीं है। फकत फलसफी किताब खोले, उस्ताद के पास पढ़े या खुद मुतालआ करे और मबाइस हल कर ले और वो सआदतमंद बनता जाएगा, ना ऐसा नहीं है। बल्कि फलसफा जो है ये जमीना फराहम करता है कि इंसान सआदतमंद हो जाए। और हमने जब जरूरत फलसफा पर बात की थी उसमें इस बात को तरतीब से बयान किया था कि इंसान की सआदत कैसे होती है। इंसान जो अमल करता है वो मौकूफ है इंसान की आइडियालॉजी के ऊपर, और इंसान की आइडियालॉजी मौकूफ है इंसान की जहानबीनी के ऊपर, वर्ल्ड व्यू के ऊपर, इंसान के अकायद के ऊपर। तो सही आइडियालॉजी तब होगी जब अकायद सही होंगे, और जब आइडियालॉजी सही होगी तो इंसान जो है वो सही अमल करेगा। तो अब बहुत सारी शराइत हैं जिनको जमीमा होना है फलसफे के साथ, ताकि इंसान अपनी उस सआदत की जिंदगी तक पहुंचे। फलसफे ने वो बुनियादी तरीन सीढ़ी का किरदार अदा करना है जिसके बाद असल कहानी शुरू होनी है, क्योंकि ये फलसफा उस बुनियाद को तैयार करता है कि जिसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी होनी है। वो क्या है? वो जानबीनी है। जानबीनी के ऊपर आइडियालॉजी की ईंट आएगी, और आइडियालॉजी के बाद जो है फिर वो नताइज देगी और अमल जो है वो इंसान सही तौर पर अंजाम देगा। बस फलसफा इल्लत तामा नहीं है सआदतमंदी का। फलसफा दुरुस्त है, बुनियादी किरदार रखता है, लेकिन इल्लत तामा नहीं है। खूब इबारत एक थोड़ी सी इसकी पढ़ लेते हैं और फिर ये दर्स जो है वो खत्म हो जाता है। जवाब देखें इसका, कहते हैं ताकीद बर अहमियत व जरूरत फलसफा बे इन माना नीस के इन इल्म इल्लत तामा व शर्त काफी बराए दाश्तन आइडियालॉजी सही व रफ्तार अमली बर तिब्क आन अस्त। फलसफा की अहमियत और जरूरत का ये माना नहीं है कि ये इल्म जो है वो काफी है, इल्लत तामा है कि जैसे ही फलसफा पढ़ा उसकी आइडियालॉजी भी सही हो जाएगी, उसकी अमल जो जिंदगी भी जो है उसके मुताबिक सही हो जाएगी, ये मुराद नहीं है। बल्कि भी इन माने अस के शर्त लाजिम बरा दस्तियाबी भी आइडियालॉजी मतलूब में बाशत, बल्कि ये लाजमी शर्त है, इसको हासिल करना जरूरी है, इसके बाद के मराहल अभी तय होने हैं। शर्त लाजिम है कि आइडियालॉजी जो मतलूब है उसको हासिल कर सके, यानी पैमूदन राह रास मुतवक्किब बर शनाख्तन आनास, यानी जो सीधे रास्ते को के ऊपर चलना चाहता है तो उसको पहले सीधे रास्ते की शनाख्त तो होनी चाहिए। व शनाख्त राह मुस्तकीम मुतवक्किफ, क्या है? मुतवक्किफ बर्दाश्त मुतवक्किफ बर दाश्तन जहानबीनी सही व हल मसाइल फलसफी आनास्त, और इंसान उस वक्त सही रास्ते की शनाख्त हासिल करेगा कि जब उसकी जहानबीनी मौजूद होगी सही तौर पर, उसके फलसफी मसाइल जो है वो हल हो चुके होंगे। व अगर कसी गाम अव्वल रा दुरुस्त बर्दाश्त, अगर कोई इंसान पहले कदम में सही कदम उठाता है, मतलब आइडियालॉजी उसने अपनी जहानबीनी को जो है वो दुरुस्त कर लिया है, वली दरगाह में दोवम इस्ताद या मुनहरिफ शुद, लेकिन आइडियालॉजी के मरहले में जाकर या वो अपना सफर रोक देता है या आइडियालॉजी में जाकर मुगालतात का शिकार हो जाता है और गलत आइडियालॉजी बना देता है, मुनहरिफ हो जाता है उसमें जाकर, तो दलील आन नीस, तो इसकी दलील ये इस चीज की दलील नहीं है कि दरगाह में अव्वल हम मुनहरिफ बुद अस्त, तो ये लाजिमा नहीं है कि वो अपनी जहानबीनी के मरहले में भी गलत व मुनहरिफ है। ना, हो सकता है ऐसा कि बाज माहिरीन जहानबीनी के मैदान में तो महारत रखते हो और उनकी जहानबीनी दुरुस्त हो,
लेकिन क्या है, आइडियोलॉजी के मरहले में आकर वो गलती कर जाएं, मुनरिफ हो जाएं। तलाजुम नहीं पाया जाता कि अगर जहान बीनी गलत है, अगर जहान बीनी मौजूद है तो आइडियोलॉजी हतमन सही होगी बगैर शरायत के, और अगर आइडियोलॉजी गलत हो गई, मुनहरिफ हो गया आइडियोलॉजी के मरहले में, तो यह तलाजुम नहीं रखता कि जहान बीनी भी उसकी गलत है। ना, मुमकिन है कि जहान बीनी में वो सही हो लेकिन आइडियोलॉजी के मरहले में जाकर उसके अंदर इनहराफ आ जाए। बल्कि बायद इल्लत तवक्कुफ या इनहराफ उरा दरगाह में दो वुम पैजुई कर्द, हम आइडियोलॉजी के मरहले में ही जाकर देखेंगे कि इस मरहले में वो क्यों नाकाम हुआ है। जान भी नहीं तो उसकी ठीक है, हमने देखा है जाकर, अब आइडियोलॉजी में क्यों उसने गलती की है उसको जाकर वहां तलाश करें जाकर, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने ये गलती क्यों की है। बस ये कहना कि बाज फलासफर जो हैं वो अखलाकी तौर पर, अमली तौर पर जो हैं वो गलत साबित हुए हैं, उन्होंने गलत अफ़आल अंजाम दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि फलसफा गलत था, या फलसफा इंसान की सआदत में कोई नक्श नहीं रखता, कोई किरदार नहीं रखता, यह बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर हम कहते हैं कि फलसफा इल्लत तामा है इस चीज के लिए, फिर आपका इतराज ठीक था, लेकिन हम कहते हैं कि फलसफा शर्त लाजिम है, ना कि शर्त काफी, यानी काफी नहीं है फलसफा बल्कि लाजिम है। आप हतमन चले, पहला कदम चूंकि इसी फलसफा ने उठवाना है आपसे, उसके बाद बाकी कदम उठने हैं, और हर जगह पे आपने शरायत का ख्याल रखना है। अगर आप उन तमाम शरायत पर पूरे उतरेंगे तो आप सआदतमंद होंगे, अगर आप फलसफे में वारिद नहीं होंगे तो आपका पहला कदम ही नहीं उठेगा, चले जाए कि आप फिर दूसरा कदम उठाएंगे। तो लिहाजा इस एतबार से फलसफा लाजिम है और इसकी दखालत जो है वो हतमी है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।